क्या नफसी उलूम की तालीम हासिल की जा सकती है, और बिलखुसूस उन्होंने इल्मुन नुजूम और पामिस्ट्री से मुतालिक सवाल पूछा है।
देखिए, इसमें भी कुरान मजीद ने बड़ी अच्छी रहनुमाई की है। ये बताया है कि यहूद के यहाँ जादू का इल्म भी मौजूद था, ये भी एक नफसी इल्म है।
ठीक,
नफसी इल्म का मतलब क्या है ये भी लोगों को बता देना चाहिए। देखिए, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक नफ्स, दूसरे मादा। जब आप मादे के कवानीन का इल्म हासिल करते हैं तो साइंस वजूद में आ जाती है। आप देखिए कि वो कवानीन जब दरियाफ्त हो गए तो मौजजात की एक दुनिया है जो इस वक्त हमारे गिर्दो पेश में बिखरी हुई है।
बिल्कुल सही।
ये उड़ते हुए जहाज और ये मरीख की खबरें और ये यहां बैठे बैठे सारी दुनिया
बगैर तार का फोन
और बगैर थार के फोन, ये सारी जितनी चीजें हैं ये दर हकीकत मादे के अंदर जो कवानीन कार फरमा है उनके इक्तशाफ से वजूद में आ गए।
ठीक,
बिल्कुल इसी तरह ये मेरे नफ्स अंदर मौजूद है, ये भी एक जहान है, ये एक जहान असगर है, इसके अंदर भी कुछ कवानीन कार फरमा है। जब आप इन कवानीन का मुताला करते हैं तो इसके जरिए से भी बड़े गैर मामूली नतीजे निकलते हैं। तो एक तो बुनियादी बात ये समझ लीजिए, ये इल्म जो नफसी इल्म है ये इंसानों ने खुद भी दरियाफ्त किया, चुनाचे ये नजूम और फलां ये इसकी मिसालें हैं। ये इल्म अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों के जरिए से भी सिखाया, हारूत मारूत उनका जिक्र है कुरान मजीद में। उस मौके के ऊपर एक तंबी की गई, वो तंबी ये है कि इन्नमा नहनो फितना फला तकफुर, यानी ये इल्म एक आजमाइश बन जाता है और इसका नतीजा कुफर में निकलता है।
ठीक,
तो इस वजह से सीखने में कोई माने तो नहीं है, सीखते थे लोग, अल्लाह ताला ने बाद सालेहीन की मदद के लिए इसका एहतमाम किया। खुद हमारे यहाँ जो सूफियाँ हैं इनमें इस इल्म के बड़े बड़े माहरीन रहे हैं और इसका इजहार भी करते रहे। मैंने अभी आपको बताया कि सैयद सुलेमान के दरबार में एक नफसी इलम का माहिर मलका बिल्किस के तख्त को, अभी हमारे यहाँ साइंसी उलूम यहाँ नहीं पहुँचे, इस पर गुफ्तगू हो रही है,
सही है
कि आपकी इस मेज़ को उठाकर ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता, यानी इसके ज़र्रात को तहलील करके दोबारा जोड़ दिया जाए। तो ये मादी इलम और नफसी इलम अपनी जगह मौजूद है, सीखिए, लेकिन ये जहन में रखिए, एक तो ये कि ये उलूम उस तरीके से साइंस नहीं बन सके, इस वजह से इसमें बड़ा खतरा होता है कि शैतनत दाखिल हो जाए।
ठीक है।
दूसरे ये है कि जिस वक्त ये नफसी इल्म आप सीख लेते हैं तो इसमें आपको बाद ऐसी कुव्वतें हासिल हो जाती हैं कि जिनके गलत इस्तेमाल का बहुत मौका होता है। इंसान का मामला ये है, वो कहा है ना किसी ने कि साहिब नजरा नशा कुव्वत है खतरनाक। तो जब आपको ताकत मिलती है तो इसके नशे में आप बाद मौकों के ऊपर अल्लाह के हदूद की पैरवी नहीं करते। तो बहुत अच्छा तबसरा कुरान ने किया कि ये इल्म फितना है, यानी एक आजमाइश है।
तो सद्दे जरिया के उसूल के तहत
फितना उर्दू के मानी में नहीं है।
जो हारूत और मारूत सिखा रहे थे वो इल्म बाबुल के कुएं में, वो उसमें ये कुरान पाक ने बयान फरमाया है कि वो मियां और बीवी के दरमियान जुदाई डालने के लिए इस्तेमाल करते थे।
जी बिल्कुल ऐसे, इसी वजह से ये कहा कि ये फितना बन गया उनके लिए।
तो यानी अगर फितने के लिए इस्तेमाल हो,
इस्तेमाल
नुकसान पहुंचाने के लिए, फिर ये नाजायज है, लेकिन अगर इससे कुछ अच्छा नतीजा मिल सके और कोई रहनुमाई मिल सके तो फिर ठीक है।
नहीं, अपनी जात में तो ऐसे ही है, साइंस का इल्म है। देखिए, साइंस का इल्म अपनी जात में तो कोई बुरा इल्म नहीं था, उससे इंसानियत को बहुत फायदे पहुंचे हैं, लेकिन उसी से आपने एटम बम और हाइड्रोजन बम बना के दो दुनिया के शहरों को गारत कर दिया। तो ये गलत इस्तेमाल है जिसके बारे में मुतनब्बे रहना चाहिए।
कुछ लोग इससे वार्न करते हैं, खबरदार करते हैं कि ये शिर्क है, पामिस्ट्री, इल्मुल आदाद, इल्म नजूम, ये शिर्क है।
नहीं देखिए, ये शिर्क उस वक्त बनेगा जबकि आप इसके हदूद से आगे इससे तवक्कुआत वाबस्ता कर लें। यानी मिसाल के तौर पर ये जितने उलूम हैं, मुझे थोड़ा बहुत इनके साथ ताल्लुक रहा है, इन तमाम उलूम में क्यास पर बुनियाद होती है, यानी कुछ क्राइन जमा किए जाते हैं, वो क्राइन मुख्तलिफ नौयत के होते हैं, उससे आप एक नतीजा निकालते हैं। अगर आप उस नतीजे को उसी तरह बयान करें, यानी मसलन हाथ की लकीरें हैं, तो हाथ की लकीरों का जो मजमूई मुताला है ये एक कोई आसान चीज नहीं है।
ठीक,
यानी ऐसा नहीं है कि आपने ये दिल की लकीर देख ली, दिमाग की लकीर देख ली, जिंदगी की लकीर देख ली, आपने फैसला कर दिया। यानी आपके हाथ के बहुत से उभार हैं, बहुत से उसके अंदर सैारे बने हुए हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर बाद ऐसी निशानियां अलामतें, उनका एक मजमुई तासर होता है।
ठीक,
एक माहिर आदमी उसके बाद एक फैसला करता है, ये फैसला लाजिम नहीं है कि हतमी हो जाए, यानी ये क्यासी फैसला होता है। इसको इसी तरीके से अगर पेश किया जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहां भी वही होता है, जैसे वो उससे मियां बीवी की जुदाई कर देते थे, यहां पर भी लोग खुदा बन के बैठ जाते हैं। अच्छा, उनके साथ ताल्लुक रखने वाले लोग भी उनको यही हैसियत देना शुरू कर देते हैं। तो बाज चीजें अपनी जात में शिरक होती हैं, बाज नतीजे के लिहाज से शिरक हो जाती हैं। बिल्कुल यही तबसरा देखिए कुरान ने वहां किया, हारूत और मारूत से जो इल्म लोग सीखते थे, یہ کہا فلا تکفر، یعنی نتیجے کے لحاظ سے کفر کرو گے، جس وقت غلط استعمال کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو یہ علوم چونکہ ایک دو دھاری تلوار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو استعمال کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ لوگ عام طور پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا انہی علوم کے ماہرین ہوں گے وہ، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر لبادہ ڈال لیں گے کہ ہم اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے،
ٹھیک ہے،
درا حالے کہ اس علم کا ماہر ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، مسیحی بھی ہو سکتا ہے، ایک بدھ مہاتما بدھ کا ماننے والا بھی ہو سکتا ہے،
خدا کا منکر بھی ہو سکتا ہے۔
یعنی یہ ایسے ہی علوم ہیں جس طرح کے سائنسی علوم ہیں،
بالکل ٹھیک ہے۔
اس میں چونکہ دھوکہ دینے، فریب دینے، لوگوں کو نقصان پہنچانے، آپ دیکھیے کہ یہ جو عامل قسم کے لوگ ہیں یہ کس طریقے سے فریب دیتے ہیں اور دکانیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا پھر چونکہ یہ علوم، میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ سائنس نہیں بنے، تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ میں ٹیسٹ کر سکوں، تو نتیجہ کیا ہے کہ ایک بعض اوقات عطائی آدمی جو ہے وہ دکان لگائے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنی بدکاری کا اڈا چلا رہا ہو۔ تو یہ وہ پہلو ہیں کہ جن کے بارے میں سوسائٹی
تھوڑا سا اس میں محتاط رہنا پڑے گا،
بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ جس میں قدم قدم پر مزلات موجود ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ کب آپ پھسل جائیں۔